अगले दिन सुबह होते ही मिस्टर दत्ता ने ब्रेकफास्ट के साथ फोन पर बात करते हुए मिस्टर जॉनसन से पूछा, सब तैयारियां अच्छे से हो गई ना मिस्टर जॉनसन? मुझे इसमें किसी तरह की गलती नहीं चाहिए। हाँ हाँ, मैंने कहा ना, आप फिक्र मत करिए, 3-4 बजे के करीब बॉम्ब ब्लास्ट होने शुरू हो जाएंगे। फिर शाम को निक जब वहां पहुंच जाएगा, तब वो ब्लास्ट होगा जो इम्पोर्टेंट है। मिस्टर दत्ता ने घड़ी की तरफ देखते हुए कहा, शाम अब ज्यादा दूर नहीं है। चलो ठीक है, तब तक आप इंस्टीट्यूट आ जाइए, हम वहीं से निक की माँ की प्रार्थना सभा में चलेंगे। जी मिस्टर दत्ता, इंस्टीट्यूट में मिलते हैं, ये कहकर दोनों ने फोन काट दिया। प्रियल अपने कमरे में मायूस दिख रही थी, उसका दिल सुबह से घबरा रहा था। प्रियल ने बेड पर अपना कंबल समेटते हुए आरोही से कहा, पता नहीं क्यों सुबह से मेरा दिल घबरा रहा है आरोही। आरोही उसके पास आई और उसका माथा चेक किया। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? बुखार तो नहीं लग रहा? अगर तुम अच्छा फील नहीं कर रही हो तो चल हॉस्पिटल चलते हैं। नहीं, इतना भी नहीं, बीमार नहीं लग रही हूं मैं, बस फीलिंग अच्छी नहीं आ रही। निक सर से झगड़ा हुआ है क्या? आरोही ने पूछा। झगड़ा तो नहीं हुआ, पर कल से उसे कोई बात भी नहीं हुई। मैंने तो कल के बाद उन्हें देखा ही नहीं। तभी प्रियल को अचानक वॉमिटिंग आने लगी, वो तुरंत बाथरूम में गई और वहां जाकर वॉमिटिंग की। आरोही उसके पास आई और कहा, अब चाहे तुम्हारी तबीयत ठीक हो या ना हो, तुम हॉस्पिटल चलो। आरोही इतना कहकर उसे इंस्टीट्यूट ले गई। इंस्टीट्यूट में दोनों मेडिकल स्टाफ की ओर जा रही थी, तभी जैन की नज़र उन दोनों पर पड़ी। जैन ने उन दोनों को देखा तो वो उनके पास आया और प्रियल से पूछा, क्या हुआ प्रियल तुमको, तुम ठीक तो हो ना? आरोही ने प्रियल को संभालते हुए जवाब दिया, नहीं कुछ ठीक नहीं लग रहा, इसे वॉमिटिंग हो रही है, मैं इसे हॉस्पिटल दिखाने जा रही हूँ। ठीक है दिखा लो, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ, लेकिन वापस आकर तबीयत का पता लेता हूँ, आज मुझे कॉन्टीसाइट का इलाका देखना है। इतना कहकर वो कॉन्टीसाइट के लिए निकल गया, जबकि आरोही प्रियल को हॉस्पिटल की ओर ले गई। लगभग 10 बजते-बजते इंस्टीट्यूट का माहौल हमेशा की तरह हो गया। मिस्टर दत्ता और मिस्टर जॉनसन भी इंस्टीट्यूट में आकर छोटा मोटा कामकाज संभालने लगे। दोपहर के लगभग 3 बजते ही इंस्टीट्यूट में खतरे का अलार्म बज गया। इन्फॉर्मेशन आई और कॉन्टीसाइड में बॉम्ब ब्लास्ट का कहा गया। तुरंत इमरजेंसी टीम तैयार हुई, जिसकी अगुवाई एमा कर रही थी, और सब बाहर के लिए निकल गए। एमा ने बाहर गाड़ियों की तरफ जाते हुए कहा, निक को मत बताना इन सब के बारे में, आज उसकी माँ की पुण्यतिथि है, उसने छुट्टी भी ली है, इस तरह की कंडीशन में उसका काम करना अच्छा नहीं लगेगा। अंकित एमा की चाल पकड़ता हुआ बोला, हाँ वैसे भी 7 लोगों की टीम रेडी हो चुकी है, इतने लोग घटना को संभालने के लिए काफी हैं, हमें निक की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो लोग निक की बात ही कर रहे थे कि सामने से निक उनकी ओर आता हुआ दिखाई दिया। निक ने आते ही पूछा, कहाँ हो रहे हैं बॉम्ब ब्लास्ट एमा? एमा ने तुरंत स्लॉट किया और कहा, टीम इज रेडी कैप्टन निक, हम संभाल लेंगे। निक ने सीना फुलाया और सीनियर की तरह पूछा, मैंने पूछा ब्लास्ट कहाँ हो रहे हैं उसका जवाब दो मुझे, मैंने ये नहीं पूछा टीम रेडी है या नहीं, यू आर माई जूनियर तो जूनियर बनकर रहो, तुमसे टीम लीड नहीं होगी। एमा ने अंकित की तरफ देखा और धीमी आवाज में कहा, साउथ वेस्ट कॉन्टीसाइड में, आप टीम की लीड ले सकते हैं, टीम रेडी है। एमा ने साउथ वेस्ट कॉन्टीसाइड का नाम लिया तो निक को याद आया जैन भी इसी जगह के बारे में बता रहा था। ये याद आते ही निक के चेहरे की हवाइयां छूटने लगीं और वो बोला, साउथ वेस्ट कॉन्टीसाइड में? ओ नहीं, जैन भी वहीं पर गया हुआ है। ये बोलकर वो अपनी पर्सनल गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ा। व्हाट, रुको निक, मैं भी आती हूँ तुम्हारे साथ, वो उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। निक अपनी गाड़ी में बैठा और तुरंत गाड़ी स्टार्ट कर ली। नहीं एमा, इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ, मैं अपने भाई को कुछ नहीं होने दूंगा, मॉम और एली के बाद अब जैन को नहीं खो सकता मैं, गाड़ी स्टार्ट करने के बाद वो बोला और तुरंत कॉन्टीसाइड एरिया की ओर निकल गया। एमा जहां गाड़ी खड़ी थी वहां पहुंचते हुए बोली, रुको प्लीज, मुझे भी साथ लेकर जाओ। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे थे। फिर वो पीछे मुड़ी और तुरंत अपनी इमरजेंसी टीम को निकलने का संकेत दिया। निक ने गाड़ी चलाते चलाते जैन को कॉल किया। जैन ने बोरिंग के बाद सामने से फोन उठा लिया। निक ने रोते हुए उससे पूछा, हेलो जैन, तू ठीक तो है ना, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? वहीं सामने जैन भी रो रहा था, भाई मैं लगभग ठीक हूँ, कंधे पर और बैक में थोड़ी इंजरी आई है, मगर यहाँ पर बहुत बड़े ब्लास्ट हुए हैं, उनमें से कोई ठीक नहीं रहने वाला और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। भाई प्लीज़ आप जल्दी आओ यहाँ पर, लोगों की जान खतरे में है, इन्हें बचा लो प्लीज़। तू निक ने अपने आंसू संभाले, फिक्र मत कर जैन, आ रहा हूँ मैं जल्दी आ रहा हूँ, प्लीज़ खुद को संभालना। जैन को चोट कुछ ज़्यादा ही लगी थी, मगर उसने निक को बताया नहीं था। कॉन्टीसाइड एरिया में उसके सामने भयानक आग लगी हुई थी, वो एक डस्टबिन के डिब्बे के पास गिरा पड़ा था और उसका पूरा शरीर खून से लहूलुहान था। भाई, जैन रोते हुए बोला, मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ आलिया को बता देना, उसे कहना मैं उससे बहुत प्यार करता था। तू ऐसी बातें क्यों कर रहा है जैन? अचानक निक का दिल बैठने लगा। आ रहा हूँ ना मैं सब ठीक कर दूंगा, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा, तू खुद बता देना आलिया को, मैं मनाऊंगा उसे हाँ बोलने के लिए। तभी पीछे एक और बॉम्ब ब्लास्ट हुआ और कॉल कट गया। निक फोन करते ही चिल्लाया, जैन जैन, हेलो जैन, मेरे भाई, जब सामने से कोई आवाज नहीं आई तब उसने अपना हाथ जोर से स्टीयरिंग पर मारा और गाड़ी को जितनी रफ्तार से चला सकता था उतनी रफ्तार से चलाने लगा। काफी सारे ट्रैफिक सिग्नल को तोड़ने के बाद वो कॉन्टीसाइड एरिया तक पहुंचा। गाड़ी रोककर उससे उतरकर जैसे ही उसने एरिया देखा वो पूरी तरह से सन रह गया। चारों तरफ खून ही खून फैला हुआ था। पास में एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग थी जहां ताजा ताजा ब्लास्ट हुआ था। निक भागकर पास के बीचों बीच पहुंचा तो बहुत सारे लोगों को और बच्चे दिखाई दिए जो झुंड बनाकर एक दूसरे को सहारा देने में लगे हुए थे। उनके आसपास काफी ब्लास्ट हुए थे जिनके चलते ही वे अपनी जगह छोड़ने से घबरा रहे थे। जैन वहीं उनके पास था और खून से लथपथ था। जैन ने अपनी गंभीर हालत में ही सबको यहाँ इकट्ठा किया था। निक उनके पास पहुंचा और जैन को देखा। जैन निक को देखते ही बोला, भाई मैं जैसे तैसे सबको यहाँ तक तो ले आया, अब आप आ गए भाई, प्लीज बचा लो इन सबको। निक उसके पास गया और उसे अपनी गोद में लेते हुए कहा, तुम्हें फिक्र मत कर, मैं आ गया हूं ना, मैं बचा लूंगा सबको, मैं किसी को कुछ नहीं होने दूंगा। तभी सामने और दाईं तरफ दो और ब्लास्ट हुए और सब चिल्लाने लगे। इसके बाद और भी ब्लास्ट होने लगे जो अलग अलग जगहों पर हो रहे थे। दूसरी तरफ निक की माँ की प्रार्थना सभा शुरू हो चुकी थी। निक चाहता था जो प्रोग्राम जैसे फिक्स किया गया था वो वैसे ही होना चाहिए, इसलिए बिना किसी रोक टोक के प्रोग्राम शुरू हो गया था। सब लोग वहां पर इकट्ठे हो चुके थे। प्रोग्राम के बीचों बीच निक की माँ की बड़ी सी फोटो लगी हुई थी जो फिलहाल पर्दे से ढकी हुई थी और उसे पर्दा 5 बजे ही हटाया जाएगा। मिस्टर जॉनसन और मिस्टर जॉनसन भी वहीं थे। दोनों कुर्सियों पर बैठकर प्रोग्राम में आने जाने वाले लोगों को देख रहे थे।
निक ने बम धमाकों के बीच जैन को अपने गोद में उठाया और लोगों को अपने पीछे पीछे लाते हुए उन्हें एक जगह की ओर ले जाने लगा जहां उसने अपनी गाड़ी खड़ी की थी। वहां कोई बम धमाका नहीं हो रहा था और वो सभी को वहीं उनकी ओर ले जा रहा था। जल्दी ही वो सबको वहां लेकर आ गया। वहां उसने जैन को गाड़ी के अंदर लिटा दिया जबकि खुद इलाके पर नज़र डालकर उसे देखने लगा। वो ये देख रहा था कि कहीं कोई और भी तो खतरे में नहीं फंसा। तभी उसकी नज़र दोबारा से अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पर गई। वहां उसे कुछ लोग दिखाई दिए जो मदद के लिए चिल्ला रहे थे। उन्हें देखते ही निक ने अपने आसपास मौजूद कुछ लोगों को जैन का ख्याल रखने के लिए कहा और खुद बिल्डिंग की ओर चला गया। मिस्टर जॉनसन आसपास के लोगों को देख रहे थे तभी उनके फ़ोन की घंटी बजी। उन्होंने फ़ोन उठाया तो सामने से किसी ने कहा, हेलो सर, कैप्टन निक एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के अंदर है, आपके क्या ऑर्डर हैं? मिस्टर जॉनसन मुस्कुराए और बोले, उड़ा दो पूरी बिल्डिंग को, वो वहां से बचकर वापस नहीं निकलना चाहिए। ओके सर, सामने से आदमी ने जवाब दिया और फ़ोन काट दिया। उसके फ़ोन काटते ही बिल्डिंग में अलग अलग जगहों पर ब्लास्ट होने लगे। ब्लास्ट इतने ज़्यादा थे कि अंदर मौजूद किसी भी आदमी के बचने की संभावना नहीं थी, यहां तक कि निक की भी, वो भी बिल्डिंग के अंदर था। जिनी को बम ब्लास्ट और प्रियल की तबीयत खराब होने, दोनों चीज़ों के बारे में पता चला। बम ब्लास्ट के लिए एम्मा टीम लेकर निकल चुकी थी जिसके बाद जिनी प्रियल की तबीयत का पूछने के लिए उसके पास आई। जिनी ने प्रियल के पास आते हुए पूछा, क्या हुआ प्रियल तुमको, तुम ठीक तो हो ना? प्रियल ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए उसे जवाब दिया, पता नहीं यार, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे लग रहा है जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है, मेरा दिल अंदर से घबरा रहा है। जिनी ने मायूस चेहरे के साथ जवाब दिया, बुरा तो हो ही रहा है, हमारे साथ नहीं तो किसी के साथ तो हो ही रहा है। कांटी साइड पर बच्चे और कुछ टीनेजर्स पिकनिक के लिए गए थे और वहां पर ब्लास्ट होने शुरू हो गए। पता नहीं किसने इस घटना को अंजाम दिया लेकिन ये काफी बुरी बात है। क्या सच में? प्रियल ने भी अपने चेहरे पर हल्की उदासी दिखाई। पता नहीं क्या मिलता है इन लोगों को ये सब करके, मासूम लोगों की जान लेकर, इसमें तो कोई खुशी भी नहीं है। फिर उसने जिनी से पूछा, निक कहाँ है? निक, जिनी ने पहले सोचा वो इस बारे में बताएं या नहीं, मगर फिर वो बोली, वो एमरजेंसी टीम में उनके रेस्क्यू के लिए गया है, ऐसे कामों में वही रेगुलर टीम को लीड करता है। प्रियल का दिल ये सुनकर और बैठ गया। वो दिल पर कसकर हाथ रखते हुए बोली, जिनी मेरा दिल बहुत घबरा रहा है, सब ठीक हो? जिनी ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में मिला और हौसला देते हुए कहा, तुम फिक्र मत करो, सब ठीक है, निक गया है ना, वो सबको बचा कर ले आएगा, वो इस प्रकार के ऑपरेशन हैंडल करने में एक्सपर्ट है, ऐसे ही उसे बेस्ट एजेंट नहीं कहा जाता। तभी आलिया वहां दौड़ते हुए आई। उसने दोनों को कहा, निक सर जिद करके वहां गए हैं, वो टीम को लीड नहीं कर रहे थे, एम्मा मैम कर रही थी। क्या? अचानक जिनी का भी दिल बैठने लगा। अब तो मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। एली भी ऐसे ही, ये कहते कहते वो रुकी और फिर आलिया से पूछा, जब टीम थी तो उसका जाना क्यों जरूरी था? तभी एवा वहां आई और सबको इन्फॉर्म करते हुए कहा, पता नहीं जैन कैसे उसी कांटी साइड पर पहुंच गया, निक उसी की वजह से गया है, मुझे जैन और निक दोनों की बहुत फिक्र हो रही है। जैन का नाम सुनकर आलिया और प्रियल दोनों चौंक गए। आलिया का दिल भी बैठने लगा, उसका मुंह रोने जैसा हो गया था। आलिया ने तुरंत कहा, जैन को क्या जरूरत थी आखिर वहां जाने की? आलिया ने टीवी रिमोट उठाया और वहां लगे टीवी को चला दिया ताकि पल पल की खबरें मिल सके। निक की माँ की पुण्यतिथि शुरू हो गई। प्रोग्राम के होस्ट ने नॉर्मल शांति मंत्र को पढ़ा और फिर तस्वीर का पर्दा उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ गया। मिस्टर जॉनसन और मिस्टर दत्ता दोनों की नजर पर्दे पर टिक गई। प्रोग्राम की होस्ट ने पर्दा उठाया और निक की माँ की तस्वीर सबके सामने आई। तस्वीर के सामने आते ही अचानक मिस्टर जॉनसन के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ वो अपनी आंखों के सामने वो देख रहे हैं जो उनकी आंखों के सामने है। वो तुरंत अपनी जगह से खड़े हुए और बाहर की ओर दौड़े। मिस्टर दत्ता ने ये देखा तो वो भी उठे और बाहर की तरफ चल पड़े। बाहर पहुंचकर मिस्टर जॉनसन ने मिस्टर जॉनसन से पूछा, क्या हुआ मिस्टर जॉनसन? इससे पहले मिस्टर जॉनसन जवाब देते उनका फोन बज पड़ा। मिस्टर दत्ता ने फोन उठाया तो शालू का फोन था। शालू ने फोन उठाते ही कहा, हेलो अंकल, देखिए ना चाची को क्या हो गया है, वो बीमार है। मिस्टर दत्ता नॉर्मल अंदाज में बोले, शालू मैं अभी इंपॉर्टेंट मीटिंग में हूँ, तुम फैमिली डॉक्टर को कॉल करो, मैं अभी नहीं कुछ कर पाऊंगा। तभी प्रियंका जी रोते हुए फोन के बीच में बोली, कांटी साइट में बम ब्लास्ट हो रहे हैं प्रभास जी, अपना बेटा प्रियंक वो भी वहीं पर गया हुआ था, उसके स्कूल की पिकनिक हो रही थी वहाँ, अभी न्यूज में बताया वो बिल्डिंग में ब्लास्ट हो गया और कई सारे लोगों की मौत हो गई। अपना प्रियंक? मिस्टर दत्ता ने ये सुना तो वो अपने होश गंवा बैठे। क्या? उनके हाथ से उनका फोन नीचे गिर गया। दूसरी तरफ मिस्टर जॉनसन ने अपना फोन निकाला और तुरंत अपने आदमियों को फोन किया। उनके फोन उठाते ही मिस्टर जॉनसन जल्दी जल्दी में बोले, रोक दो वो सब, अभी रोक दो, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए। मगर सामने के आदमी ने कहा, पर सर वो बिल्डिंग तो पूरी तरह से उड़ चुकी है, वहां पर तो वो सारे लोग भी मर चुके हैं, इतने सारे धमाकों के बाद कोई नहीं बचा होगा। मिस्टर जॉनसन के हाथों से भी फोन गिर गया। वो तुरंत मिस्टर दत्ता की तरफ हुए और गुस्से में उनसे बोले, आज तुम्हारी वजह से मुझे ये करना पड़ा, मैं इसके लिए कभी खुद को माफ नहीं करूंगा। वहीं मिस्टर दत्ता ने भी सामने से गुस्सा दिखाते हुए कहा, तो आप मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हैं, मेरा बेटा भी वहां पर था, अगर उसे कुछ हो गया तो मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। मिस्टर जॉनसन रोने लगे। रोते हुए उन्होंने कहा, और तुम्हें पता है वो अंदर जो तस्वीर लगी है वो किसकी है? वो मेरी पत्नी पार्वती की है। अगर वो मेरी पत्नी है तो निक, निक वो मेरा बेटा है। मेरी पत्नी मेरे बेटे को लेकर बहुत साल पहले चली गई थी, जिसके बाद मैं अब तक उन्हें ढूंढ रहा था, और आज आज मैं ही अपने बेटे की मौत का जिम्मेदार बन गया। मेरा बेटा निक, मेरा निक, मिस्टर जॉनसन कहकर चहलकदमी करने लगे। वहीं मिस्टर दत्ता अपने घुटनों पर हाथ रखकर नीचे जमीन की ओर देखते रहे। इस मौके पर उन्हें क्या कर रहे थे नहीं सूझ रहा था। मिस्टर जॉनसन ने अपना फोन निकाला और अपनी आंख साफ करते हुए न्यूज देखी। न्यूज में यही बता रहे थे कि बिल्डिंग में मौजूद सभी लोग मर गए। थोड़ी ही देर में न्यूज के अंदर जैन दिखा जो बिल्डिंग के अंदर जाने की कोशिश कर रहा था और चिल्ला रहा था, मेरा भाई वो वहीं है। ये देखकर मिस्टर जॉनसन की आंखों से दोबारा आंसू आ गए। वहीं प्रियल जिट ने ये न्यूज देखी तो वो गहरे शोक में चली गई। वो अपनी जगह से खड़ी हुई और टीवी की तरफ उसके नजदीक गई। मेरा भाई बिल्डिंग के अंदर है, उसकी जान को खतरा है। जैन के मुंह से उसने दोबारा ये सुना तो उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया और वो बेहोश होकर वहीं गिर गई। जिनी तुरंत उसकी ओर दौड़ी और उसे संभालते हुए कहा, प्रियु प्रियु उठ, डॉक्टर। उसने डॉक्टर को आवाज लगाई। एवा आलिया सब गहरे सदमे में थे, चारों तरफ दुख का माहौल था। यहाँ प्रियल और बाकी के लोग दुखी थे, वहां प्रभास दत्ता के घर पर प्रियंका दत्ता और बाकी के लोग दुखी थे। उधर मिस्टर दत्ता और मिस्टर जॉनसन दोनों का भी यही हाल हो रहा था। इन बम धमाकों से सबको बराबर चोट लगी थी। जिनी के बार बार डॉक्टर चिल्लाने पर डॉक्टरों की एक टीम तुरंत आई और प्रियल को देखने लगी। ये समय सबके लिए मुश्किल समय था।